कहानी का नाम है आदर्श पत्नी और इसकी लेखिका है एंजेलिका कोरोडिशर। कुछ भी हो सकता है उस दरवाजे के परे जो एक आदर्श पत्नी ने खोला हो, मरिया वरेला ओसोरियो की याद में। अगर आप कभी उससे रास्ते में टकराएं, तो जल्दी से सड़क पार कर गति पकड़ लें, वह एक खतरनाक औरत है। उसकी उम्र 45 से 50 साल के बीच है। उसकी एक विवाहित बेटी है और एक बेटा है जो सान निकोलस में नौकरी करता है। उसका पति मैकेनिक की दुकान में काम करता है। वह सुबह बहुत जल्दी उठती है, घर के सामने झाड़ू मारती है, अपने पति को विदा करती है, कपड़े धोती है, खरीदारी करने जाती है और खाना पकाती है। दोपहर के खाने के बाद वह टीवी देखती है, फिर सिलाई या बुनाई करती है। वह हफ्ते में 2 बार कपड़े इस्त्री करती है और रात को देर से सोने जाती है। शनिवार के दिन वह घर की सफाई करती है, खिड़कियां धोती है एवं फर्श चमकाती है। रविवार की सुबह वह उन कपड़ों को धोती है जो उसका बेटा घर लाता है। उसके बेटे का नाम है नेस्टर एडुआर्डो। फिर वह नूडल्स या रेवियोली पास्ता बनाती है और शाम को उसकी भाभी उससे मिलने आ जाती है या वह अपनी बेटी के घर चली जाती है। वह एक अरसे से कोई फिल्म देखने नहीं गई है, लेकिन वह रेडियो लैंडिया मैगजीन और अखबारों में क्राइम से संबंधित समाचार शौक से पढ़ती है। उसकी आंखें झुर्रीदार हैं एवं हाथ खुरदुरे हैं। वह अब उम्र दराज होने लगी है। उसको अक्सर ठंड पकड़ लेती है। वह अलमारी की दराज में लेस के कॉलर और आस्तीन वाली काली क्रेप ड्रेस के साथ एक तस्वीरों का एल्बम भी रखती है। यों तो उसकी माँ ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन एक बार जब वह 6 साल की थी, दरवाजे पर रंगीन चौक से चित्रकारी करने पर उसकी माँ ने उसकी जमकर धुलाई की थी और फिर गीले कपड़े से पूरा दरवाज़ा साफ भी करवाया था। साफ करते हुए उसके दिमाग में सभी दरवाज़ों के विषय में एक ख्याल आया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि वे बड़े मूर्ख किस्म के होते हैं, क्योंकि वे हमेशा एक ही जगह पर खुलते हैं। और जिस दरवाजे को वह साफ कर रही थी, वह तो सबसे ज्यादा मूर्ख दरवाजा था, क्योंकि वह सीधे उसके माता पिता के कमरे में जाता था। और फिर उसने उस दरवाजे को खोला, लेकिन तब वह उसके माता पिता के कमरे में नहीं खुला, बल्कि खुला सीधे गोबी रेगिस्तान में। इससे वह चौंकी नहीं, हालांकि उसको नहीं मालूम था कि गोबी रेगिस्तान क्या है, और अभी तक स्कूल में भी सिखाया नहीं गया था कि मंगोलिया कहाँ है, और ना ही उसने, ना उसकी माँ या दादी ने कभी नानशान या खांगाई नूरू के बारे में सुना था। उसने दरवाजे के पार कदम बढ़ाए और थोड़ा झुककर अपने हाथों से उस पीली सी जमीन को खुरचा। उसने देखा कि आसपास कुछ नहीं था, कोई इंसान भी नहीं। रेगिस्तान की गर्म हवा उसके बालों को उलझाने लगी थी, इसलिए वह वापस दरवाजे के इस ओर आ गई और दरवाजे को बंद कर दोबारा उसकी सफाई में लग गई। सफाई खत्म होने पर उसकी माँ ने उसे थोड़ा और लताड़ा और कहा कि पहले कपड़े को धोए, फिर झाड़ू से रेत समेटे और अपने जूते साफ कर ले। उस दिन उसने दरवाजों के बारे में अपनी जल्दबाजी में बनी राय बदल ली, हालांकि पूरी तरह से नहीं, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उसने देख न लिया कि दरवाजे खोलने पर क्या क्या हो सकता है। जिंदगी भर उसके साथ यह होता रहा कि दरवाजे समय समय पर तो ढंग से बर्ताव करते, लेकिन आम तौर पर वे मूर्ख ही रहते और डाइनिंग रूम में, रसोई घर में, लॉन्ड्री रूम में, बेडरूम में, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी किस्मत अच्छी रही तो दफ्तर में खुलते। लेकिन रेगिस्तान में खुलने के 2 महीने बाद, उदाहरण के तौर पर, जो दरवाज़ा हमेशा बाथरूम में खुलता था, वह खुला एक कारखाने में, जिसमें लंबी पोशाक, नुकीले जूते और तिरछी टोपी पहना एक दढ़ियल आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी की पीठ उसकी तरफ थी। उस कमरे में एक चक्की एवं विशाल पेंच वाली नायाब मशीन थी। उस मशीन के पीछे खड़े लंबे एवं कई दराजों वाले फर्नीचर से वह कुछ निकाल रहा था। वहाँ पर हवा ठंडी थी और किसी चीज़ की तेज़ गंध आ रही थी। बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और उस पर ऐसी भाषा में चिल्लाने लगा जो वह नहीं जानती थी। उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर उस बूढ़े आदमी को चिढ़ाया। फिर वह दरवाजे से बाहर निकली, उसको बंद किया और उसे वापस खोलकर बाथरूम में चली गई एवं रात के खाने के लिए हाथ धोने लगी। एक समय और, बहुत सालों बाद, दोपहर में सोने के लिए जब उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, तो वह सीधे उतरी युद्ध के मैदान में। उसके हाथ जख्मी एवं मरे हुए लोगों के खून से सन गए। उसने एक मुर्दे की गर्दन से क्रॉस खींचा और रख लिया। बहुत समय तक इस क्रॉस को वह बटन वाले ब्लाउज या ऊंची गर्दन वाली ड्रेस के नीचे एक लॉकेट की तरह पहनती थी। अब वह उस लॉकेट को नाइटी के नीचे एक टीन के डिब्बे में रखती है। उस डिब्बे के साथ में एक ब्रोच, अंगूठियों की एक जोड़ी और एक टूटी हुई घड़ी रखी होती है जो उसकी सास से उसे मिली थी। और इसी तरह बिना किसी कोशिश के किस्मत से उसने अपने आप को पाया 3 मोनेस्ट्री में, 7 पुस्तकालयों में, विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों पे, अनगिनत थिएटरों में, बड़े गिरजाघरों में, जंगलों में, मांस पैक करने वाले संयंत्र में, नालों में, विश्वविद्यालयों और रंडीखानों में, वनों और तंबुओं में, पनडुब्बियों में, होटलों और खाइयों में, द्वीपों पे और कारखानों में, महलों में, झोपड़ियों में, ऊंची मीनारों में और जहन्नुम में। इस सब की उसने न कोई सूची बनाई और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता। कोई भी दरवाज़ा किसी भी जगह ले जा सकता था और इस तथ्य का उतना ही वजन था जितना कि रेवियोली पास्ता में आटे की मोटाई का था। उसकी माँ की मृत्यु का था और ज़िंदगी की उन अलग-अलग राहों का था जिन्हें वह टीवी पर देखती थी और जिनके बारे में वह रेडियो लैंडिया में पढ़ती थी। अभी कुछ समय पहले वह अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के पास गई थी और जब उसने क्लिनिक के हॉल में स्थित बाथरूम के दरवाजे को देखा, तो वह मुस्कुराने लगी। उसे पक्का नहीं पता था, क्योंकि उसे कभी भी पक्का नहीं पता हो सकता था, मगर वह उठी और बाथरूम में चली गई और वह पहुंची बाथरूम में ही। कम से कम वहाँ पर एक नंगा आदमी पानी से भरे टब में लेटा हुआ था। वहाँ सब कुछ बहुत भव्य था। बहुत ऊंची छत, मार्बल का फर्श और खिड़कियों पर पर्दे। वह आदमी उस गहरे और छोटे से सफ़ेद टब में सोता हुआ मालूम पड़ा। वहाँ एक लोहे की टेबल थी जिसके पैरों पर शेर के पंजे बने थे और पंजों पर लोहे की पत्तियों एवं फूलों की नक्काशी थी। उस टेबल पर एक उस्तरा, एक शीशा, बाल घुंघराले करने वाले चिमटे, तौलिए, टैल्कम पाउडर की एक डिब्बी और एक पानी का प्याला रखा हुआ था। दबे पांव वह आगे बढ़ी, टेबल से उस्तरा उठाया और टब में सोते हुए आदमी का गला रेत दिया। उस्तरा ज़मीन पर फेंक, उसने उसी टब के गुनगुने पानी से हाथ साफ किए और बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। क्लिनिक के गलियारे में निकलते वक्त उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बाथरूम के किसी दूसरे दरवाजे से अंदर जा रही थी। उसकी बेटी ने उसकी तरफ देखा। आप बड़ी जल्दी वापस आ गई। टॉयलेट काम नहीं कर रहा, उसने जवाब दिया। और कुछ ही दिनों बाद उसने रात के समय नीले तंबू में एक और आदमी का गला काट दिया। वह आदमी एक औरत के संग जमीन से लगे हुए बड़े से बिस्तर पर अधढका सो रहा था। तेज हवा में तंबू खिंच सा रहा था और दिए की लौ लपलपा रही थी। थोड़ी ही आगे होगी उनकी छावनी, जिसमें होंगे सैनिक, जानवर, पसीना, खाद, हथियार और आदेश। मगर वहां अंदर चमड़े और धातु के वस्त्रों के बीच एक तलवार थी। उसने उस तलवार से दाढ़ी वाले आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सोती हुई औरत में कुछ हरकत हुई और जब तक उसकी आंखें खुली तब तक वह दरवाजे से वापस अपने आंगन में आ गई, जिसे अभी कुछ ही समय पहले उसने धोया था। सोमवार और गुरुवार की दोपहर जब वह शर्ट की कॉलर पर स्त्री फेरती है तो वह सोचती है कटी हुई गर्दनों और खून के बारे में और इंतज़ार करती है। गर्मी के मौसम में वह कपड़े अंदर रखने के बाद थोड़े समय के लिए टहलने जाती है, जब तक कि उसका पति घर ना आ जाए। और सर्दी में वह रसोई में बैठकर कपड़े बुनती है। ऐसा नहीं है कि हर बार उसका सामना निद्रामग्न पुरुषों या खुली शून्य में घूरती लाशों से ही होता है। एक बरसाती सुबह जब वह 20 साल की थी उसने अपने आप को जेल में पाया और वह जंजीरों में बंधे कैदियों का मजाक उड़ाने लगी। एक रात जब बच्चे छोटे थे और घर पर सभी सो रहे थे, उसे चौक पर अस्त व्यस्त हालत में एक औरत दिखाई पड़ी। वह औरत अपने पर्स में पड़े रिवॉल्वर को घूर रही थी, लेकिन उसे निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उस औरत के पास जाकर उसने रिवॉल्वर उसके हाथ में थमाया और वह तब तक वहां खड़ी रही जब तक एक गाड़ी नुक्कड़ पर आकर खड़ी हुई। जब तक उस बेतरतीब बिखरी हुई औरत ने सलेटी कपड़ों में जेब में चाबियां टटोलते एक आदमी को गाड़ी से उतरते देखा, जब तक उस औरत ने पिस्तौल तानी और गोली दाग दी। और एक रात जब वह 6ठी कक्षा का भूगोल का होमवर्क कर रही थी, वह अपने कमरे में कलर पेंसिल लेने गई और एक आदमी के पास पहुंची जो बालकनी में खड़ा होकर रो रहा था। बालकनी बहुत ऊंची थी, सड़क से काफ़ी ऊपर। उसमें लालसा जागी उस आदमी को वहां से धक्का मारकर गिराने की, जिससे कि वह उसके नीचे गिरने की आवाज़ सुन सके। मगर उसे साउथ अमेरिका का भौगोलिक मानचित्र याद आ गया। वह बस वापस जाने ही वाली थी, लेकिन चूंकि उस आदमी ने उसे देखा नहीं था तो उसने उसे धक्का दे दिया और वापस नक्शे में कलर भरने के लिए भाग आई। उसने उस आदमी के नीचे गिरने की आवाज़ तो नहीं सुनी, मगर उसे उस आदमी की चीख ज़रूर सुनाई दी। और इसी तरह एक खाली मंच पर मखमली पर्दों के नीचे उसने अलाव जलाया और दंगे के दौरान उसने एक तहखाने के किवाड़ खोल दिए और एक घर में अध्ययन कक्ष के फर्श पर बैठकर उसने 2,000 पन्नों के हस्तलेख को बर्बाद किया और वन में खुली जगह पर सोते हुए आदमियों के हथियारों को गाड़ दिया और एक नदी में उसने बांध के जल द्वार खोल दिए। उसकी बेटी का नाम लॉरा इनेस है और उसके बेटे की सान निकोलस में एक प्रेमिका है जिसको उसने अगले रविवार घर लाने का वादा किया है। उसको याद से अपनी भाभी से संतरे के केक के नुस्खे के बारे में भी पूछना है। और शुक्रवार को वे टीवी पर एक नए शो का पहला एपिसोड प्रसारित करने वाले हैं। वह प्रेस को शर्ट के सामने वाले हिस्से पर एक और बार घुमाती है और याद करती है उन जगहों को जो उसके घर के सावधानी पूर्वक बंद दरवाज़ों के दूसरी ओर हैं, उस ओर जहाँ उतनी घिनौनी चीज़ें नहीं होती जितनी दरवाज़े के इस ओर होती हैं, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे।